से भी बड़ी महिमा वैष्णव की है, भक्तों की है, भक्तों को ही वैष्णव कहते हैं। बिना वैष्णव की कृपा से, बिना भक्तों की कृपा से भगवान का मिलना कठिन है। भगवत भक्ति के ये मूल है साधु संत, बिना साधु संतान नारद जी वैष्णव हैं, ब्रह्मा जी वैष्णव हैं, प्रहलाद जी वैष्णव, ध्रुव जी वैष्णव, तत्पश्चात रामचंद्र जी के समय में हनुमान जी वैष्णव, श्री शंकर जी वैष्णव, सुग्रीव श्री गुरु जी वैष्णव, राम के जो भाई लक्ष्मण जी भरत जी हैं, इनको वैष्णव इसलिए नहीं कह रहा कि वो शक्ति नाम करते हैं, भगवान के अंश हैं। पश्चात में कृष्ण के समय में पांडव लोग भगवान के वैष्णव, व्यास जी परम वैष्णव, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी परम वैष्णव। भागवत इन वैष्णवों की गाथा है और भगवान की भी गाथा है, किंतु वैष्णवों की गाथा है। वैष्णवों को, भक्तों को निकाल दिया जाए तो कृष्ण का कोई चरित्र रह नहीं जाएगा। तो ऐसे जो है वैष्णवों के लिए कहा गया अग्रह है, पहले उनका दुख बंद सब जगत का नाश हो जाएगा, मुक्ति तबे सर्व बंधना तबे से हित पारे कृष्णदास और वैष्णव दास। पहले मुक्ति हो जाती है, दुखों से छुटकारा मिल जाता है, उसके सारे जीवन के बंधन कट जाते हैं और सब उसके काम क्रोध लोग बात वो सब दूर हो जाते हैं। जिनका मन संसार का समस्त वैभव मिल जाने पर भी तनिक भी नहीं जोड़ता मन, और संसार का सारा वैभव छीन जाने पर भी, बड़े बड़े कष्ट आने पर भी, जिनका मन भगवान की भक्ति से इतना रंच मात्र भी नहीं दर्द, चाहे वैभव मिल जाने पर चाहे वैभव न सब, उनका मन नहीं दर्द रहता, ऐसे जो वैष्णव है जगत में दुर्लभ। विशेष करके चैतन्य महापुरुष के समय में जो रूप सनातन भगवान के परिकर है, वो वैष्णव के रूप में साधक भक्त के रूप में आए, वो उन्होंने को शिक्षा दिया जो वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव के क्या गुण हैं, वैष्णव के अभ्यंतरीण गुण हैं, बाहरी और भीतरी दो प्रकार के गुण हैं। भीतरी जो उनका आंतरिक भाव या गुण है उसको तो समझना बड़े बड़े लोगों के लिए, देवताओं के लिए, उनके ऊपर के जो लक्षण कुछ हैं उसको लेकर के कुछ निरूपण किया गया। आंतरिक लक्षण क्या है, भगवान के प्रति प्रेम, ये मापा जोखा देखा नहीं जा सकता, कहीं आंखों से आंसू निकल जाएगा तो ये थोड़ा सा दिखा रही, ये तो बड़ी भारी लाख रुपया मिलने पर भी उसको मट्टी समान कर समझ करके उसको क्या कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी का जो बाहरी लक्षण था, कपड़े नहीं कुछ नहीं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे, भगवान का प्रेम तो ये देखा नहीं जा सकता, इसलिए ऊपर लोग लड़के धूल डाल पागल समझ रहे और नंगे पड़े हुए हैं, ये उनका बाहरी लक्षण। भीतरी लक्षण क्या है, प्रेम में सब समय गदगद है। ये सब निरूपण करना सहज नहीं है, ये वैष्णव बनने के लिए पहले वैष्णव का गुण, वैष्णव का चरित्र, वैष्णव का अंतर्राज्य लक्षण, ये समय हमें जानना चाहिए, तब उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। यदि हमको इंजीनियर बनना है तो हमको पहले से ही साइंस पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो साइंस पढ़ना, वैज्ञानिक बनना है तो साइंस पढ़ना, उसके बहुत से विभाग हैं, पढ़ करके तब फिर वैसे योग्य बनेंगे, तब फिर योग्य व्यक्ति के यहाँ जा करके पढ़ करके तब योग्य होकर के तब फिर साइंटिस्ट बनेगा, ऐसे नहीं। उसी तरह से जब वैष्णव का गुण हम समझेंगे, इससे क्या लाभ है ये समझेंगे, ये कृष्ण भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, सब प्रकार की संपदाओं के चरणों में डूबती है, भक्ति भक्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतय। हम तो अनुभव, हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस चीज को। सब प्रकार की संपत्तियां, मुक्ति, ये सब भक्तों के चरणों में डोलते हैं और उठाते हैं, नहीं उनको नहीं चाहिए। जितने ये जो योग इत्यादि हैं, सुख रूप धारण करना, किसी के मन की बात जान लेना, किसी का रूप दूर कर देना, ये सब जो चीजें हैं, विभूतियां हैं, ये सब भक्तों के चरण में दी जाती है, कभी उसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए भक्तों की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए उसको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा पहले कि वैष्णव कौन है, वैष्णव के आंतरिक लक्षण क्या है, उनके बाहरी लक्षण कैसे हैं, कैसे वे चलते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं, दूसरों के प्रति उनका क्या व्यवहार होता है, ये सब हमें जानना। कल हम लोग, आप लोग तैयार होकर के वैष्णव लोग आएंगे, वैष्णव के चरित्र के संबंध में समझ बूझ करके, पढ़ लिख करके, उसको अनुसरण करने की इच्छा से कि हम ऐसे को खड़ा करेंगे, वो बतलाएंगे। आज हम सबसे पहले, अब तो समय भी हो गया है, सवा सात तक चलेगा, और कल हम सवेरे 5 बजे शाम को बैठ जाएंगे, 5 से लेकर 7 बजे बैठेंगे, सबके विचार सुनेंगे, कैसे उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, ये सब लोगों को देखेंगे। इसे आज क्या नाम है, बड़ा पुजारी वाला पहले यहाँ का परमेश्वर यहाँ करके खड़े होकर के बोलो तो थोड़ा सा वैष्णव का चरित्र, वैष्णव को कैसा होना चाहिए, काम क्रोध में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वैष्णव के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है, उनका बाहरी ऊपरी सब लक्षण और उनका चरित्र, उनके महिमा का वर्णन। और कल के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे, जब किसी को मैं कहूँगा खड़े होकर के ये बतलाएंगे, और अपने जीवन में मेल कर करके वो अपने जीवन में लाने की चेष्टा करेंगे। तो अपनी बात का है, वैष्णवता का ये विचार है, वैष्णवता ये जिम्मेदार है, ऐसा मालूम पा तुम अपने हृदय की फफोले खोल रहे, तुम ये विचार करके करो कि हमको क्या चाहिए, दूसरे को मत करो। यदि गुरु जी सर्वज्ञ हैं, सर्व समर्थमान हैं, तो वो जो चला गया उसकी बात को गुरु जी नहीं जानते थे, उसको रोक नहीं सकते थे, उसको समर्थ गुरु जी को नहीं थी, इसलिए ये सिद्धांत ऐसा नहीं करता। इसलिए बच्चों के जो लक्षण तो दिन जो होता है, हमको ये विचार करना चाहिए, हाँ मैं दिन नहीं करता, मेरा जैसा दुर्भागा दूसरों का दोष खोलता है, अपना दोष नहीं देखता, अपना दोष देखना है, ये वैष्णवता है। इसमें यदि गुरु जी विदेश में गए तो वहां से समर्थन की नहीं थी, जो आदमी जो चला गया दिन दिला करके, वो किस लिए गया, अपने कर्म से गया है ना दूसरे कर्म से गया, ये विचार को अभी तो उसी के लिए उठना दी, अभी तो सुलभ दिया अभी ना बताया नहीं परंपर तो नहीं अभी सीखो, इसलिए ऐसा नहीं, दूसरों का कभी मत दोष देखो, देश देखने वाला यदि है तो गुरु जी खुद देख करके ये विचार करेगा, हमको अपना अपना चरित्र सुधारना, वैष्णव बनना ये जरूरी है। वो सुई चली चालनी का दोष देते हैं, सुई में चालनी चली सुई का दोष देते हैं, कहिए अपना एक ये छेद है ये बंद करो, अरे चालनी में खुद ही लाख छेद है, वो क्या दूसरों का छेद। इसलिए पहले हम लोग बच्चों में भाव से दूसरों के दोषों को न दे सकते, गुणों को देखेंगे, आना जाना हमने देखा है, लाखों लोग आए और लाखों लोग चले गए, वो अपने कर्म से गए, दूसरों के लिए नहीं, ये दूसरों पर मत लगाओ। अब कल हम लोग
इस विषय पर विशेष वार्ता करेंगे, विशेष शास्त्रों का अध्ययन करके खूब तीन से अपने को ग्रहण करने के लिए वैष्णव बनाने के लिए हम दूसरों का की आलोचना में हमारे अंदर में क्या क्या दुख है, हम कैसे वैष्णव हो सकते, हम प्रहलाद महाराज की तरफ हैं, चैतन्य महाप्रभु के चौकों की सबसे ख्याल है, वैष्णव कभी भी दूसरों का दोष नहीं देते हैं, जो वैष्णव का जो दूसरों का दोष देते हैं वो कभी वैष्णव नहीं। पहला तो ये जो सब समय अपना दोष देखे दूसरों का दोष देखे, आज यहीं पर है और कल से सब इसका विचार सुनेंगे, यदि सुन रहा है बहुत अच्छा है, यदि होगा तो हम उसमें सुधार करने की चेष्टा करेंगे, आप लोग उसको सुधार करने की बहुत प्रमाण धन मिल जाएगा। यदि पुत्र जाति है तो धृतराष्ट्र के भांति एक का पुत्र मिल जाएंगे, यदि तुम लोग कन्या जाति है तो कन्याएं भी 10-20 मिल जाएंगी, सुंदर लोग पति चाहते हैं तो पति भी मिल जाएंगे, सुंदर स्त्री कोई चाहता है तो स्त्री भी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं, नाम में इतना प्रभाव। किंतु रावण को 1,00,000 पुत्र थे, शंकर जी ने दे दिए, और 1,25,00,000 नाम भी थे, और सोने की लंका बनी, किंतु नतीजा क्या हुआ, क्या हुआ सभी तो जानते हैं, आग में जल गई लंका और नाती पुत्र सबके साथ में मारा गया, एक विभीषण केवल बचा। ये संसार छिपी हुई आग है, इस चीज को समझो, यह आग केवल हरिनाम से बुझेगी और उससे नहीं बुझ सकती है। कोई कहता है हमारी ये समस्या, पति ही हमको मारते हैं पीटते हैं घर से निकालते हैं, कोई कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं, कोई कहते हैं कि हमारा बिजनेस चल गई, कोई कहते हैं कि सास ससुर हमें घर से बाहर कर, किंतु कोई ये नहीं कहता है जिससे राधा कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम नहीं हो रहा है, ये कोई नहीं कहता, समस्या किंतु यही है, जिस दिन राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति होने लग जाएगी उस दिन कोई भी समस्या नहीं रहेगी, सब अपने आप दूर हो जाएगा। हमारा जन्म मरण जब से पृथ्वी की सृष्टि हुई है तब से हुआ, इस चीज को समझो, कभी कीड़े मकोड़े, कभी घोड़े, कभी बैल, कभी मछली, कभी पूछ, कभी पेड़, ये सब हुए, कभी इंद्र भी बने हम लोग, देवताओं में भी हमारा जन्म हुआ है? अभी ये तुम समझते कि पहली बार हमारा जन्म हुआ और पहली बार हमारी शादी हुई है, मत समझो, तुम्हारी करोड़ों बार न जाने किसके किसके साथ में शादी हुई, कभी तुम लोग पुरुष बना, तुम्हारी स्त्री पुरुष लोग जो बने हैं वो तुम्हारी स्त्री बनी, ऐसा भी हुआ, कभी गधा हुआ कभी गधी मिली, कभी सुअर बना कभी सुअरी मिल गई, उसके कितने बच्चे हुए, हम लोग ऐसे लाखों जन्म पार करके आए हैं, इस जन्म में यदि भगवान का भजन नहीं किया तो सूद दरसू चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में जाते में पीस देगा, यदि इस बार भजन नहीं हुआ, इस चीज को समझो, सुअर को बच्चे और स्त्री मिलती है उसको कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं, उसको समस्या है कि आदमी उसको मार करके खा जाते हैं, बस ये समस्या, ऐसा जगत में कोई नहीं जन्मा जिसको कोई समस्या नहीं है भाई, सभी अपने अपने समस्याओं में जी रहे और सोच रहे कि अब 2-4 दिन का ये दुख है अब ये मिट जाना है, इतने में 2-10 दुख पहले से तैयार आ जाते हैं, कोई भी आज तक जन्म जन्म में समाधान नहीं कर सका, इसलिए ये जन्म जो मिला है सब समस्याओं कराते हुए ही भगवान का नाम जपना है, भगवान का भजन करना है, और कृष्ण से सहज कुछ नहीं है, तुम्हारे 1,000 दोष हैं विपत्तियां हैं किंतु उसमें भगवान का नाम आदमी कर सकता है, इसलिए सहज सरल रूप में जब समय मिले भगवान का भजन करो, ये अच्छा भाई एकादशी के दिन में यहाँ के लिए कर दिया है, और साधु संत मिल जाता है संग हो जाता है, तुमको ज्ञान का उपदेश करते हैं भक्ति का उपदेश करते हैं, ये जगत में कहीं नहीं है, मैं अमेरिका इंग्लैंड हॉलैंड और सारा विश्व घूम करके आया, मैं
बंगाल में, गुजरात में, असम में, उड़ीसा में, मद्रास में, इधर में, हरियाणा, सब जगह घुमाया, ऐसा सत्संग कहीं नहीं होता। ये तुम लोगों का परम सौभाग्य है। और इस जन्म में यदि भाव सागर नहीं पार कर गए और पार कर गई, अब न जाने कितने करोड़ फिर जन्म होगा। इसलिए कोई समस्या यदि है भी, दुख कष्ट है भी, द्रौपदी पर कष्ट हुआ, दुख हुआ, दुख आया ना द्रौपदी, कितने दुख, पांचों पांडवों को उन लोगों ने जीत लिया, फिर द्रौपदी को भी जीत लिया, उनके विभक्त करने की चेष्टा की, उनके वस्त्र निकाल दिए जाए, उनको नंगी करके भरी सभा में दुर्योधन के जांग पर बैठाई जाए, रजस वाला अवस्था में उनको घर से ले आए, कोई नहीं रखता, पांचों पांडव लोग भी चुपचाप रहे, पांचों पांडव लोग चुपचाप भीष्म भी देखते रह गए, तत्पश्चात द्रोणाचार्य जी देखे, धृतराष्ट्र और गंधारी भी बैठी थी, कुछ नहीं करती, कुंती भी सामने है, धृतराष्ट्र ने भी नहीं किया। उस दुख की स्थिति में किसने बचाया, कौन बचाया बतलाओ, किसने ने बचाया ना, इसे इस जन्म में उनके लिए प्रार्थना। तुम्हारे घर में कोई दुख भी है, कष्ट भी है, तो उनसे बोलो, गिरिराज जी देने वाले तुम्हारे घर में बैठे, चिंता मत करो, उन पर पूरा पक्का भरोसा रखो, सब समस्या दूर हो जाएगी। बस समस्त समस्याओं का एक हल निदान है, भगवान के प्रति भक्ति हो, और उनसे संसार की कोई चीज मत चाहो, वो बड़े बुद्धिमान हैं, सबके अंतर को जानने वाले हैं, हमको दुख हो रहा है वो जानते नहीं है। द्रौपदी को जब ये कष्ट हो रहा था, सिर हरण कर रहा थे, उस समय भगवान को मालूम था कि नहीं ये हो रहा है, तो वो क्यों नहीं आ गए, आए क्यों नहीं, क्यों नहीं आए बता सकती है, क्यों नहीं है, जान रहे समझ रहे थे, अभी हम लोग को जितना जितना दुख है वो जानते नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि भगवान का भजन है। किंतु जब सबको छोड़ करके उनके शरणागत हो जाएंगे, उनको पुकारेंगे, केवल और संसार में आशा भरोसा नहीं रही, तब वो आएंगे और करेंगे, वो जान बूझ करके हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे, किंतु हम ऑपरेशन को समझ नहीं रहे, उनकी कृपा को समझ नहीं रहे। यदि किसी के माँ बाप ने और घर वालों ने, गांव वालों ने किसी एक लड़के को मार पीट करके घर से निकाल दिया और वो यहाँ वृंदावन में आकर के भगवान का भजन करने लगा, तो जो घर से मार पीट करके निकाला उसके लिए ये भगवान की कृपा है न भगवान की ये क्रोध या उनका द्वेष है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। एक आदमी ने घर से निकाल दिया मारपीट करके वृंदावन में आकर के वो भजन कर रही है, ये भगवान की कृपा को समझ, हम तो अपने आप निकल करके जाएंगे नहीं। धृतराष्ट्र इतने दिन तक घर में रहा, कृष्ण समझाने के लिए आए, व्यास जी उसको समझाने आए, समझा, उन्होंने कहा कि तो तुम बनने चले जाओ, इन बच्चों को छोड़ दो, अने से इनको घर से निकाल दो, ये बड़े दुष्ट, नहीं माना किसी की। आज जब अंत में क्या हुआ, वंश का ध्वंस हो गया ना, कोई नहीं बचा, पांडव के तरफ से मारे गए, पांचों पांडव केवल बच गए और कृष्ण बचे और बाकी सब मारे गए, आ इनका तो सब ही लोग खत्म हो गए। तब विदुर जी आए, बोले ये तू क्या कर रहा है, तुमको लज्जा नहीं आती, घर में बैठा है, भीम कुत्ते की भांति तुमको रोटी फेंक देता है, जिस भीम को तुमने अगर मरवाने की चेष्टा की उसका राज्य ले लिया और वो रोटी का टुकड़ा तुमको खिलाता, तुम खाता, तुमको लज्जा नहीं आती, तुम्हारे लड़के मारे गए, तुम्हारी बहुएं सब विधवा हो गई, तुम्हारे नाती लोग मारे गए, सभी लोग खत्म हुए, और तुम क्या चाहता है बोलो तो, तुम अभी घर से निकलो, चलो हमारे साथ भजन, अपने मन से नहीं अंत में विदुर लेट करके गए और उसको हरिद्वार में रख दिया, अंत में वो उनकी सब गति हो गई भजन से। तो इस तरह से यदि भगवान ही, यदि हम नहीं निकलना चाहते हैं घर से, हम भजन नहीं करना चाहते। और भगवान ऑपरेशन करके कष्ट दे करके घर वालों से जन्म निकलवा देता है और भजन की व्यवस्था करता है, तो ये तो उनकी कृपा है, हम नहीं कर सकते। घर वालों से अपमान करा देगा, घर में रहने नहीं देगा, मीराबाई को रहने दिया, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा थी जो मीराबाई को घर से निकलवा करके ब्रज में ला करके फिर उनको भेज दिया था। ये तो भगवान की बड़ी कृपा। और जो अपने बाल बच्चों के साथ में अच्छी तरह से रह करके भगवान का भजन करें वो तो बहुत अच्छी बात है, करें। इसलिए भगवान यदि दुख भी देता है तो उसको ग्रहण कर लो, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल से वो दुख आया, दूसरा नहीं देख रहा। हमारे घर के लोग हमें मार पीट रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, बिलबिलाते क्यों हो, मत बिलबिलाओ। इस जन्म में ऐसा काम करो जब बिलबिलाना न पड़े, फिर इस चीज को समझो। इस जगत से तुम्हारे कर्म है वो दुख लाएंगे ही, और सुख होगा तो सुख भी लाएंगे। इसलिए जो पूर्व जन्म के कर्म के फल हैं उनको जैसा जैसा हंसते हुए भोग लो, और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म के लिए हम अभी भजन कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति। इस तरह यदि तुम लोग हंसते हंसते दुखों को नहीं भोगेगी या भोगेगा तो तुमको भगवान भोगा देंगे, वो तो भोगना ही है। तुम हंस करके भोगो, रो करके भोगो, जैसे भोगाएंगे, कोई रक्षा नहीं, तुम्हारे कर्म है वैसे कराएंगे। इसलिए इन चीजों को समझो। एक समय में भीष्म पितामह जी बैठे हुए थे, सत्सज्जा पर सो रहे थे। कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के आए। ये पांचों भाई बड़े दुखी हैं, इन्होंने सबको मार करके और बड़ा भारी पाप किया एक छोटे से राज्य। कृष्ण उनको नहीं समझा रहे हैं, ले गए भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जी इनको सांत्वना देने लगे। देर पर उन्होंने कहा कि देखो, एक बुढ़िया थी, ब्राह्मण विधवा थी, उसको एक ही एक 12 वर्ष का बच्चा था, बड़ा सुंदर काम, घर में कुछ था नहीं, किंतु बुढ़िया किसी प्रकार से भीख मांग करके जैसे तैसे चक्की चला करके अपना जीवन का निर्वाह, बच्चे का पालन पोषण। अब लड़का 12 वर्ष का देखने में खूबसूरत अच्छा हो गया। एक दिन बच्चे से कहा कि बेटा जरा फूल ले आना ठाकुर जी के पूजा के। वो सवेरे में अभी अंधकार कुछ था, अभी प्रकाश पूरा नहीं हुआ था, वो फूल सुनने के लिए गया। पास ही में जंगल में फूल थे, और उसी की घनी अंधकार में जहाँ पर कि खूब पेड़ पौधे सब चारों तरफ से लगे हुए थे, उसमें जाते ही एक सांप काला निकला और उसको साथ ही साथ वो मर गया। एक बहेलिया जा रहा था, उसने सांप को मंत्र के द्वारा पट्टी खुल करके पकड़ लिया और एक घड़े में उसे डाल करके ऊपर से एक ढक्कन दे और बच्चे को गोदी में लेकर के उसके मैया के पास गया। मैया ने देखा जैसे हमारा बेटा मर गया, वो देखते ही छाते पीट करके रुक, उसने बच्चे को रख दिया, खड़े को रख दे करके वो भी बैठ गया। मैया खूब जोर से बोले, जब रोना पड़ा था कमा तो उसने कहा मैया कहो जिस सांप ने ये इसको काटा बिना किसी कारण के, इसको मैं बोटी बोटी काट दूं, उनसे जला करके खत्म कर। एक बार कही, दो बार कहा, मैया बोली बेटा यदि सांप के जिलाने से, सांप को मारने से और उसे जला देने से हमारा बेटा जीवित हो जाए तो इसको मैया ये तुम्हारा बेटा तो नहीं, तो फिर इसको लाभ क्या है, इसको मत मारो, इसको मत सताओ। अरे मैया ये तो दूसरे को काटेगा। तो उसने कहा कि हमारे बेटे को ही क्यों काटा, दूसरों को क्यों नहीं काटा, क्यों नहीं काटा, और आज तक हो गए 12 वर्ष नहीं काटा, आज ही काटा क्यों, और उसमें 12 वर्ष से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको किसी को नहीं काटा, क्यों काटा नहीं। तो उसने कहा कि जैसा भी ये इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तो हम काटेंगे। इतने में सर्प बोला, भाई हमको नाहक क्यों मारते हो, हमने इसको नहीं काटा, काल ने कहा कि इसको काटो तो मैंने काटा। मैंने काल ने कहा तो किसी के कहने पर जो कोई कोई किसी को कष्ट देता है तो वो भी अपराधी होता है। हमने कहा कि भाई इनको गोली से मार दो, तो ये विक्रूफ हो गया। जिन्होंने कहा कि गोली मारो तो इसको भी फांसी होगी और जिसने मारा उसको भी फांसी होगी, तो सांप तुम्हारे लिए भी और जिसने कहा उसके लिए भी दंड देना। इतने में काल आ गए, मृत्यु आ गई सामने रूप धारण कर। बोली जैसे अरे सांप तू झूठ क्यों बोलता है, हमने तो नहीं कहा, इसने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया था उसी का फल आया ऐसे और वही सांप बन करके इसको कहता है, न तो मैंने दुख किया न तुमने कहा। इसलिए कोई कष्ट और दुख जीवन में होता है तो क्या समझो, एक आदमी अंधा हो गया जन्म से, किसने मारा जो अंधा हो गया उसके कर्म ने उसको अंधा किया। एक आदमी 10 वर्ष की उम्र में रोगी होकर के मर गया, कैसे मर गया, रोग क्यों आया, एक आदमी धनी घर में टाटा बिरला के घर में विश्व के सबसे अच्छे धनी घर में जन्म लिया और उसी समय एक दरिद्र घर में जन्म लिया, क्यों क्यों हुआ, अपना अपना कर्म ले जाता है। एक लड़का दिन भर रात भर पढ़ता है, 10 बार मैट्रिक में फेल होता है और एक लड़का पढ़ता नहीं है, खेलता कूदता है और वो फंसता जाता है, क्यों, एक बुद्धिमान हो जाता है और एक पागल जाता है, क्यों, अपना अपना कर्म। एक आदमी दिन भर मजदूरी करता है उसको 5 रुपए मजदूरी नहीं मिलती और एक आदमी आलीशान से घर में बैठा हुआ उसको करोड़ों रुपए एक दिन में आमदनी होती है, क्यों, अपने अपने कर्म। एक आदमी गोरा होता है बड़ा सुंदर, एक आदमी काला कलूसी और कुबड़ी होती है, क्यों, अपना अपना कर्म। इसलिए इस चीज को समझो, इस जन्म में ऐसा कर्म करेंगे जो हम दूसरे जन्म में दुख नहीं भोगना पड़े, और वो कर्म क्या है, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, ऐ बल एक गति है, दूसरा कोई भी गति नहीं, अपने कर्म से इसको नहीं कोई टाल सकता। इस चीज को समझ करके दुख आएंगे और रहेंगे, कोई भी इसको दूर नहीं कर सकता। जो भी कोई कहता है कि ये भाई 1000 रुपया दो मैं 1 सोने का कवच देता हूँ तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, ये झूठा मक्का है, उसके हाथ में मत पड़ो। वो सबसे वो अपना दुख क्यों नहीं दूर कर देता, अपना दरिद्र क्यों बैठा है, वो तुमने उसे पैसा हड़पने के लिए आता है, इसलिए उनकी बातों पर विश्वास मत करो। स्त्रियां बड़ी कोमल स्वभाव की होती हैं, कोई कह देगा जैसे तुमको ये कवच दे दूंगा, तुमको ये मंत्र दे दूंगा और तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और तुम्हारा बिजनेस खूब चमकने लग जाएगा। अच्छा तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं चमकाता, नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके और ऐसे ही रो रहा है, कबूतर पाल रखा कि चिड़िया उससे चिट्ठी निकलवाता है और 2 पैसे मिलते हैं तो उसकी घर की रोजी नहीं चलती, तो तुम अपना सुधारो, हमारा क्या सुधार करेगा, उसके चक्कर में मत, तो तुम लोग चक्कर में पड़ जाती हो। आज यदि घर में आया आज जैसे तुम अपना सोने का दे दो, तुमको इसको डबल करके दे दे, तो तुम तो अपना गहना का सब निकाल करके दे दे और वो सब लेकर के भाग जाएगा और उसके बदले में नकली उल्टी सब लेकर के चला जाएगा और तुम फिर रोएगी बैठ बैठ करके। इसलिए ये सब में चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, सुख दुख आ जाता है उसको चलते जाओ और भगवान का भजन करो, किसी को दुख मत दो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, किसी का अहित मत करो। यहाँ तक कि शरीर के द्वारा कल्याण हो जाए, जैसे पेड़, पेड़ की छाया, पेड़ की छा, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, पेड़ के फल, पेड़ की लकड़ी, सब दूसरों के लिए होती है, पेड़ के लिए नहीं होता। ऐसे हमारा तन मन वचन धन जो कुछ है दूसरों के लिए, सब तो भगवान का भजन होकर के तुम लोग सुखी रह सकते हैं या रह सकती है। हमें एकादशी तो पालन करते हैं और एकादशी के दिन में 1 किलो जूस ले लिया मुसब्बी का सवेरे और 1 किलो राबड़ी मलाई दूध मिला करके पी लिया 5 मिनट के बाद में या 1 घंटे के बाद, फिर दोपहर में पकौड़ी दही की, दही के पकौड़े, पानी पूरा, हलवा, घी पूरा भरा हुआ और उसमें भी राबड़ी इत्यादि मलाई हुई मिली हुई और वो भी जकार गए और फिर तीसरे बार में फिर कुछ चला, ये एकादशी नहीं है, उपवास करो पूरा, नहीं होता है तो शाम को 4 बजे कुछ थोड़ा सा पानी पी लो बस, थोड़ा सा गुड़ आलू उबला हुआ या कंद उबला हुआ लेकर के जीवन निर्वाह के लिए बस सब पे काफी हो गई और हरि नाम करो, हरि कथा सुनो, घर का काम करो, दूसरों को कष्ट मत दो, चोरी झूठी बेईमानी मत करो, सब पे काफी होगी। आने से एकादशी का घोष ला करके दिन भर खाते रहे और सोते रहे, सिर में दर्द है, सुख नहीं पाते हैं, रात भर दिन भर सोए रहे एकादशी के दिन में, ये एकादशी इस चीजों को समझो बुझो। और ऐसा एकादशी करो, अर्थात से यहाँ पर कीर्तन करो, घर का काम भी करो, देखो तो क्यों नहीं भगवान की कृपा होती है, जन्म जन्मांतर सुधर जाएगा। श्रुति सिद्धांत यह है उर्गारी भजिए राम सरकार, सब काम बिसर जाए कोई बात नहीं, भगवान का भजन मत करो, छोड़ मत, घर से निकाल देगा तो ठीक है निकल जाएंगे, भगवान का भजन ऐसा दृष्टि। देखो ये अमेरिका के रहने वाली पढ़ी लिखी घर में बड़ी अच्छी और घर बार को छोड़ करके आई है, वृंदावन में रह रही है, कोई चिंता नहीं है और इसको सब प्रभु ने सारी व्यवस्था करा, रहने की खाने की पीने की, तो तुम लोगों की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, आप लोगों की नहीं हो जाएगी, फिर डर की बात क्या है, कल क्या होगा, यदि महाराज जी नहीं रहे तो फिर क्या होगा, अरे क्या होगा, जो होगा तो होगा, भगवान का भजन तो कर, अभी तो कर, इसलिए डरने की और चिंता करने की जरूरत नहीं, जो प्रभु जैसा करेगा उसमें हम खुश रहेंगे, जहां रखेगा जिस रूप में, क्या है ना, सही विधि रहिए, जाही विधि रखे ना, सही विधि रखिए, और सीताराम सीताराम क्या, ये झूठ मोटा नहीं दिखते गया, किंतु हम लोगों को विश्वास नहीं होता, विश्वास तुम लोग का कहें मथुरा मन में वृंदावन में गिरिराज जी के किनारे और जमुना जी बह रही है, कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, हमारा सबका परम सौभाग्य है, यहाँ रह करके यदि भजन किसी का नहीं होता तो वो सबसे संसार में दुर्भाग्य कोई है, तो वो यहाँ का कुंवर भी सौभाग्यवान है, यहाँ का गधा कुत्ता भी सौभाग्यवान है, वृंदावन का यहाँ के कुत्ते को जो रोटी डाल देते हैं ठाकुर जी का भोग, उसका कल्याण नहीं और कहाँ मिलेगा उसको, परिचित धूलि से मिलेगी, ए परिचित धूलि का कितना मूल्य है समझो, जिसमें ब्रह्मांड अखिल रह सकता है, ये समझो, इसलिए भगवान के ऊपर में भरोसा करके भगवान का नाम करो, सर्व साधु रूप में एकादशी के दिन में खूब कीर्तन करो, घर भी करो और जो सुख सुख आता है बस इस तरह करके अपना गौ